के विचारों को, गुरु के आचार को ये ग्रहण करना ही गुरु पदाश्रय है। यदि आपने वो मंत्र भी लिया और उसका आचरण गुरु जी के चरण पर चल करके यदि नहीं किया, गुरु जी हैं निर्गुण और हम हैं यदि तामसी, तो आश्रय लेना हुआ अपने भावों को संपूर्ण रूप से दूर करके गुरु जी के भावों को लेना ही ये उनका पदाश्रय, ऐसा लेना है। चल मंत्र जप रहे हैं, क्या मंत्र का तात्पर्य है ये सब कुछ नहीं जानते, मंत्र किस लिए है, क्या चीज है कुछ भी पता नहीं, उसे हजार वर्ष भी करते रहे तो विशेष कुछ जानती है। उनका पदाश्रय करके, उनके भावों को समझ करके यदि हम मंत्र जपे इत्यादि, बहुत थोड़े दिन में चित्त निर्मल होकर के वो हमारे हृदय में स्फूर्ति होगा। तो स्वरूप इंद्रिय प्रभु निज इंद्रिय गौन अविष्ट है यहाँ पर एक गान अस्वादन, महाप्रभु जी अपने समस्त इंद्रियों को उनके इंद्रियों में मिला दिया और उनके गानों को सुन रहे हैं और तब इस गान के अनुरूप में महाप्रभु जी के तरह तरह के भाव उदित हो रहे हैं। भावेर आश्वे आवेश प्रभु भूमि ते बसिया तर्जनीते भूमि लिखे अधमुख हरिया, इन भावों के आप में आविष्ट होकर के महाप्रभु जी क्या कर रहे, मानो बिरहनी के रूप में हो गए। कोई बिरहनी जिस प्रकार से बिरह में व्यथित होकर अपने पैरों से भूमि में लिखती है, नीचे देखती है, उसी तरह से तर्जनी से भूमि लिखे अधोमुख है, नीचे मुख करके और पीछे लिख रही है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख रही है। अंगुली खत्म हवे ज्ञानी काम होता है, वो ऐसे दिख रहे हैं अपने अंगुली से, ऐसे मैंने विरह में होता अंगुली कहीं घाव न हो जाए इसलिए उसको मना कर रहे काम होता है। भय नहीं जो करे निवारे प्रभु का, उनके हाथों को पकड़ लेते हैं प्रभु भवानुरूप स्वरूप रे गाय जब ये रस तहा करे मूर्तिमान, प्रभु के भाव के अनुरूप ही सब दामोदर के कीर्तन होते हैं, कभी जयदेव के, कभी गोविंद गीत गोविंद के पद, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोक, कभी मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि के बाद पदों को लेकर के ठीक अनुरूप जैसा उनका भाव है ऐसे ही सुनाते हैं। श्री जगन्नाथ देव देखे श्री मुख कमल तार ऊपर सुंदर नयन युगल, चेतन महाप्रभु जगन्नाथ जी का केवल मुख कमल देख रहे हैं बस इतना ही, अब मुख कमल में भी देख रहे हैं नयन युगल और कहीं हाथ पैर पर उनका इधर कहीं भी ध्यान नहीं, एकदम निविष्ट हो गया। जैसे गोपियां कहती हैं कि आज तो हमारा परम सौभाग्य है कि कृष्ण को आपाद मस्तक हमने पूरा देखा, तो विशाखा जी ने कही तुम्हारा सौभाग्य है, किंतु हमारी सखी और हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है कि हमारा हमारी आंखें जहाँ जिस अंग में कृष्ण की पड़ जाती हैं बस वहीं चिपक जाती हैं कभी, महाप्रभु जी का ऐसा ही ठीक आंखों में, जब ही हाथों पर ध्यान जाता तो क्या होता, कहते ये ठूठे जगन्नाथ, इधर उधर जाता है कमल नयन के आंखों में ही एकदम वो चिपक जाती है। सूर्य किरण मुख करे झलमल, वो रथ चल रहा है ना और सूर्य की किरणें वहां पर पड़ रही हैं, कभी मेघा छन्न हो जाता है भी और कभी सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं, क्षण में धूप छलक पलक में छाए वो वहां पर, ऐसे वहां पर अभी वर्षा खूब जोरों से हो रही होगी तो इस तरह से कहें सूर्य की किरण चमक पर झलमल झलमल कर रही है। माला बस तो दिव्य अलंकार परिमल, प्रभु हृदय आनंद सिंधु छवि, प्रभु के हृदय में आनंद सिंधु छवि किस लिए, जो कृष्ण आज वृंदावन में पधार रहे, कहाँ से पधार रहे हैं, द्वारका भेज तो आए किंतु आ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, आ रहे हैं हम लोगों के साथ में वृंदा, उन्माद प्रेम के कारण उनमें उन्माद हो गया है, झंझावा बड़ी जोर से आंधी आने पर सबको अपसेट कर देता है, उथल पुथल कर देता है, उनके हृदय को उथल पुथल कर देता है ये प्रेम। खने तत खने उठिल आनंद उन्मादे उठाए भावे तरंग, नाना भावत सैन्य उपजिल युद्ध रंग, भावोदय भाव शांति संधि साबल्य संचारी शाक्तिक स्थायी भाव प्रबल। ये सब भक्ति स्वामी सिंधु या उज्जवल मणि यहाँ पर लेकर के पूजा दी, समझने वाला समझेगा अथा समझना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि एक साथ में उन्माद झंझावात ये सब ऐसा उठा, नाना प्रकार के नए नए भावों की संधि हो रही है, नए नए प्रकार के भाव, कभी एक भाव दूसरे भाव को दबा देता है, कभी भावों का युद्ध चल रहा है, कौन बलवान है, जो बलवान है वो दुर्बल को दबा देता है। भाव उदय माने भावों का उदय होता है, कैसे भाव उदय, कृष्ण को देखा उस समय कृष्ण को देखते ही वृंदावन याद आए, उसमें राष्ट्र स्थल याद आ गया और कृष्ण को दर्शन करने से गोपियों के हृदय में जैसी भावनाएं आते हैं उनमें उनके हृदय में भी वैसे ही भाव। भाव शांति, भाव शांति कहते हैं एक भाव तब एक जैसे कि समुद्र में तरंग उठती है, जब वो चली जाती है तो दूसरी आती है और इधर से वो लौट करके जाती है
तो भाव सावली है,
तो उसमें से एक उधर वाली जो आ रही है ना उसको नीचे वाली जो जा रही है ऊपर कर देती है, वो ऊपर से वो प्रबल है ना इसलिए उसको लान करके नीचे आ रही है, तो इसलिए एक भाव दूसरे भाव को शांत कर रहा है, भाव सावल। संधि क्या दोनों भावों में मिलने का, संचारी माने भाव समुद्र को संचरित करता है, वह संचारी इसी को कहते हैं अनुभाव। हृदय में जो भाव होते हैं कृष्ण संबंधित जो भाव जो सत्व से उत्पन्न होते हैं और भीतर के भावों को अपने लक्षणों से सूचित करते हैं वह है अनुभाव। शक्ति जो सत्व से उत्पन्न होते हैं वो शक्ति स्थाई, स्थाई माने पांच प्रकार के जैसे स्थाई भाव हैं। भाव प्राबल्य भावों की प्रबलता, प्रभु र शरीर जनो शुद्ध हिमाचल, प्रभु शरीर जन शुद्ध हिमाचल, महाप्रभु जी का शरीर कैसा है जैसे हिमालय स्वच्छ एकदम बर्फ के समान हिमाचल। भाव पुष्पद्रुम, भाव क्या है पुष्पद्रुम, पुष्पों के वृक्ष हैं, ताहे पुष्पित सकल उसी में ये सब पुष्प लगे हुए हैं, कौन कौन
संचारी
अनुभाव
भाव
ये सब देखे थे आकर्षे सवार चित्तमन, जो देख रहे हैं सवार चित्तमन माने सवार माने क्या महाप्रभु के भक्तों का, सवार माने जनरल पर्सन नहीं, वो लोग नहीं समझने किसलिए महाप्रभु जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं किसलिए रोमांच हर्ष आ रहे हैं ये नहीं समझते, वो देख रहे हैं बस देख रहे हैं और उनको ये सब देखने में रुचि नहीं है, वो क्या कर रहे हैं रथ का रस्सी खींच रहे हैं और जय जगन्नाथ जगन्नाथ बोल रहे हैं और महाप्रभु के जो भक्त हैं इनको कुछ कुछ समझ रहे हैं, वो भाव अभिष्ट होकर के रस्सी हाथ से छोड़ दिया और महाप्रभु जी के पास आकर के दिन बस इसी में आविष्ट। प्रेमामृत दृष्टि प्रभु सिंचे सवार, प्रेमामृत वृष्टि, वृष्टि से प्रेम की अमृत की वृष्टि से अपने भक्तों का माँ प्रभु जी सिंचन कर रहे हैं। कैसे सिंचन कर रहे हैं? यहाँ तो भाव में मग्न है और वो संकेत होकर के भक्तों के हृदय में जाता है और उनका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, संचरित हो जाता है। जगन्नाथ से वो जतो राज पात्रवान यात्रिक लोक नीलाचलवासी जतो जान प्रभुर नित्य प्रेम देखी हय चमत्कार कृष्ण प्रेम उपजिल हृदय। मैं तो समझता हूँ कि उस वर्ष रथ यात्रा में जो लोग आए हुए हों वो कैसे लोग होंगे और जन्म जन्मांतरों में कभी रथ में यदि आए होंगे या उसकी बात सुनी जैसे हम लोग सुन रहे हैं और ऐसे ही सुनते सुनते हृदय में एक भावना हो गई, ओ हमारा जन्म क्यों नहीं महाप्रभु जी के समय में हुआ जी इसको देखा, जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है उस समय मेरा कम जन्म नहीं, अब मैं हम लोग चाहते हैं कि उसी समय में हमारा जन्म हो, जब महाप्रभु रथ को खेचवा रहे हैं और उनके ऐसे भाव हो रहे हैं हम लोग भी उसको देखें। ऐसी प्रबल भजन करते करते प्रबल आकांक्षा जब हृदय में होगी तो इसके बाद में महाप्रभु कृपा करके उसमें उन लोगों को जो साधारण आदमी है उसमें जन्म दे करके रथ यात्रा में उनको आकर्षण किया योग माया के द्वारा। इसलिए उस समय के जन साधारण भी साधारण नहीं, कौतूहल के लिए क्यों नहीं वहां पर गए, इसलिए वो सब योग माया के प्रभाव से उस समय महाप्रभु जी के लीला में सम्मिलित। इसलिए वहां पर जितने भी यात्री हैं लोग हैं नीलाचलवासी हैं प्रभु नित्य प्रेम देखी है चमत्कार कृष्ण प्रेम उपजिल हृदय सवार प्रेमी नाचे गाय लोग करे कोलाहल, प्रेम में सभी लोग कोलाहल कर रहे प्रभु नित्य कहिए यात्री चौगुण मंगल। रथ के दर्शन से जो फल होता है उसे चौगुना फल महाप्रभु जी के इन भावों को दर्शन करने से सब यात्रियों को हुआ। अन्य रेखी का काल जगन्नाथ फलदार प्रभु नित्य देखित सुखे चलीला स्वप्न, उसे जो सुकृति होगी ना उनके इस प्रसंग को सुनने से वही सुकृति होगी, यदि श्रद्धा के साथ में सुना जाए तो इसका भी कार्य वही होगा, वैसे ही सुकृति होगी प्रभु के नित्य को देख करके सुखे चलीला मंथर। जगन्नाथ भी उस नित्य को देख करके मंथर गति से चलने लगे, धीरे धीरे चलने लग गए। कबू सुखे नित्य रंग देखे रथ राखी से कौतुख ये देखी दो से ही तारसा, जिन्होंने उसको देखा है वही उसका साक्षी है। इसलिए सनातन हमारे रूप गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया है, ए मंथर नित्य प्रभु करिते करिते प्रताप रुद्र आगे चलीला लागिला पड़ी थे, वो प्रताप रुद्र के सामने पहुंच गए और उसी समय भाव अविष्ट होकर के वहां पर गिरने लगे। प्रताप रुद्र ने डरा तो जरूर डर गए किंतु फिर भी उन्होंने उनको ऐसे पकड़ लिया, ताके देखते प्रभु बाज्य हो, उनको देखते ही प्रभु जी को बाज्य हो गया और राजा देखी महाप्रभु करें धिक्का छी छी छी, इसका हमको संग हो गया, इसका स्पर्श हो गया, विषय स्पर्श है जो हमारा विषय का स्पर्श हो गया।
पहले जो
स्पर्श
हुआ था
उसमें तो अवश्य ही उनका ज्ञान ही नहीं था, जी जाए बिना ज्ञान के ही उस पर कृपा करते, केवल श्लोक के गुण के कारण अवश्य नित्यानंद हो गया और सावधान काशीश्वर गोविंद आदि छिड़ अन्य था। उस समय काशीश्वर गोविंद इत्यादि अन्य स्थान में थे, नित्यानंद भी कुछ असावधान हो गए, इसलिए इन लोगों ने देख करके महाप्रभु जी को पकड़ा नहीं, इसलिए इन्होंने पकड़ लिया। तब महाप्रभु जी छिछी करने लगे, यद्यपि राजा रे देखी झाड़ी से मने प्रसन्न हैया के तारे मिली बारे, यद्यपि झाड़ू उनका देना देख करके ये प्रसन्न हो गए, लक्ष्यों का काम झाड़ू देना, किंतु जगन्नाथ जी के लिए किया, इसलिए उन पर प्रसन्न हो गए, इसलिए उन पर कृपा करना चाहते हैं। किंतु ऊपर से ऐसा दिखला रहे हैं मानो वो विषयी हैं और उनको स्पर्श से उनका चित्त अशुद्ध हो। यदि किसी विषयी के स्पर्श से यदि ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं तो उसका अन्न खाने से और उसका संग करने से क्या होगा? विषयी किसको कहते हैं? जो विषयों के प्रति आसक्त है, अपने शरीर के प्रति आसक्त है, भंजन के प्रति आसक्त है, यहाँ तक कि अपनी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान की आराधना भी करते हैं, उनको कहते हैं भगवान की आराधना के द्वारा भी अपने भोग्य वस्तु को पाया जा सकता है। अधिकांश गृहस्थ लोग इसीलिए कहते हैं हमारे घर में सुख और शांति रहे, सभी अच्छी तरह से विघ्न बाधा न हो, इसलिए ठाकुर जी की पूजा करते हैं अधिकांश। कृष्ण भक्ति के लिए, स्वरूप के मंगल के लिए ऐसा नहीं करते, कृष्ण के चरणों में एकांतिक होती हूँ इसके लिए नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं। यहाँ पर फिर भोग लगा, अब भोग लगाने के बाद में सबको दिया गया। रथ यात्रा, रथ वहां पर पहुंचा, हेरा पंचमी हुई और हेरा पंचमी के बाद में प्रतिदिन महाप्रभु जी उनके यहाँ दर्शन करने आते और फिर समुद्र में स्नान करने जाते, बड़े सुख से वहाँ पर बिताया, जैसे कि कृष्ण वृंदावन में आए। फिर अंतिम दिन कौन सी थी? आज ही, आज ही है ना, आज ही के दिन
दशमी,
दशमी के दिन, आज दशमी है, यही मत क्रीड़ा के जब प्रभु अष्ट दिन, आठ दिनों तक वहां पर क्रीड़ा के, आज दशमी चले थे प्रतिपदा के दिन और आठ दिन तक तो वहां पर किया, आठ दिन के बाद नौवें दिन, आठ दिन दिने जगन्नाथ भीतर विजय, अपने मंदिर में वो लौट, रथ चढ़ी जगन्नाथ चले निजालय। अब ये रथ पर चढ़ करके अब चल रहे हैं कहाँ? निजालय, अपने घर में, कहाँ? नीलाचल में जा रहे हैं। पूर्ववत कैला प्रभु लैया भक्तगण परम आनंदे करें नितन, माँ प्रभु जी सब भक्तों को लेकर के खींच करके फिर लौटा करके वहीं पर ला रहे हैं मंदिर में, उनकी भावना क्या है?
वृंदावन ले जा रहे हैं,
वृंदावन ही ले जा रहे हैं, ये भावना नहीं है कि मैं वहाँ से सुंदराचल गया था वृंदावन और वृंदावन से उनको लेकर के वहाँ आ रहा, क्यों? आविष्ट थे। यदि उनको पता होता है कि मैं वृंदावन से कृष्ण को लेकर के द्वारका में जा रहा हूँ तो महाप्रभु जी नहीं कर, किंतु उस समय भी परम आनंद करें नर्तन कीर्तन, नर्तन और कीर्तन करके उनको दिया रहे। इसीलिए भक्त लोग जिनका कुछ ज्ञान रहता है, आविष्ट नहीं होते, वो लोग उल्टे रथ में कोई आनंदित नहीं होते, वो देखते हैं कि वृंदावन से वो रथ लौट करके वहां जा रहा है, नीलाचल में जा रहा, द्वारका में जा रहा, इसलिए उनको इसमें रुचि नहीं होती। पहला दिन तो देख लेते हैं, इसके बाद में देखा तो देखा, नहीं तो नहीं देखा, उसमें उनकी रुचि नहीं रहती है। जगन्नाथ पुनः पांडु विजय हरिद, पुनः उन्होंने पांडु विजय कराया और एक एक गुटी एक गुटी पट्ट डोरी तहां टूटी गया, हमको खींच करके लाया जा रहा था तो उनकी रस्सी पुरानी होने से टूट गई थी, पांडु विजय कुली फटी फूटी जाए, जगन्नाथ फरे तुला उड़ी उड़ी पलाए, कुलीन ग्रामी रामानंद सत्यराज खां तारे आज्ञा दिल प्रभु करी आसन, उन्होंने सम्मान करके उनको आदेश दिया जो प्रतिवर्ष तुम नई नई डोरी लेना जगन्नाथ जी का, डोरी तो फट फट करके उड़ रही है,
तुला उड़ रही है,
उसको वो प्रतिवर्ष वहाँ पर बन जाएगा, किंतु डोरी जरा कठिन है बनाना, इसलिए उनके यहाँ पाट अति छोटा था, इसलिए पाट के द्वारा रस्सी बना करके वहाँ से लाई गई। एक पट डोरी तुम्हें हो जजमान, पति वस्त्र आनवे जोड़ी करी आने जगन्नाथ जी की यह तुम सेवा कर। ऐतो बोली दिला तारे छिंडा पट्ट डोरी, एक टूटी हुई डोरी का एक टुकड़ा उनको दे दिया। ये कैसे बनता है? उसमें बहुत सी डोरियों को मिला करके एक डोरी मोटी डोरी बनाते हैं। पहले अलग अलग से डोरियां बनती, फिर बहुत से मिला करके उसमें तब एक डोरी बनती। यहाँ देखी करीबे डोरी अति दृढ़ कर एक पट्ट डोरी दे है शेष अधिष्ठान, इसमें शेष का अधिष्ठान है और रथ में पृथ्वी देवी का स्थान है। दस मूर्ति हैया जेहो सेवे भगवान भाग्यवान से सत्यराज रामानंद सेवा आज्ञा पाइया है परम आनंद परम वो आनंदित होकर के प्रतिवर्ष को ऐसे ही रसी बनाकर खिलाते। प्रतिवर्ष गुंडी चाहते भक्त बने संगे पट डोरी लैया ऐसे पति बड़ रंग कभी जगन्नाथ जाई बसला सिंहासन, जगन्नाथ देव को सिंहासन पर बैठाया गया। महाप्रभु घरे आई जाए लैया भक्त रंग, महाप्रभु जी अपने भक्तों को लेकर के अपने घर में। यही भक्त भक्त गणे यात्रा दिखाई लो भक्तगण लैया वृंदावन के लिए चैतन्य गोसाई लीला अनंत पार सहस्त्र बदने जार नहीं पाया। महाप्रभु लीला सहस्त्र सहस्त्र धारा वाली है, शस्त्र बदन जो शेष है उनकी इस लीला को भी नहीं पूरा गान कर सकते। ये कथा हमने किस लिए की? श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे से रूप और रघुनाथ के पद में जिनका आस है, किस लिए आस है? रूप रघुनाथ जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें उनके भावों का वर्णन है, उन्होंने अपने भावों का वर्णन पूरी रूप से उसने किया है। जो किस लिए साधन भजन करते हैं, साधन भजन का उद्देश्य क्या है, कैसे वो साधन भजन करते हैं, उनके उपास्य कैसे हैं, उनकी उपासना कैसी है, गोपियों के भाव कैसे हैं, ये सब का उन्होंने वर्णन किया है। अब उन्हीं भावों को प्राप्ति करने के लिए जिनके हृदय में आशा है उन लोगों के लिए इस चैतन्य चरितामृत का कथन मैंने किया। इन भावों को पढ़ करके ये समझेंगे रूप और रघुनाथ जी की ही भावना इसमें निहित है, हम उसको सहज रूप से ऐसे पा सकते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु जी अब भक्तों को विदाई देंगे। पहले तो निमंत्रण लिया था अद्वैताचार्य और साधम भट्टाचार्य और सब शिवास पंडित जितने गृहस्थ लोग हैं और बड़े बड़े भक्त लोग हैं उनका निमंत्रण दिया। प्रधान प्रधान के घर में एक एक दिने से भी तीन लेने से भी उनका चार महीना पूरा। अब जो थोड़े जो रह गए अधिकांश लोग पांच सात मिल करके एक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आते हैं और अपने घरों घर में। इस प्रकार से करते चार महीना समय न जाने कहाँ चला गया। चार महीना तक कोई भी भक्त वहाँ से नहीं आया। चार महीना पूरा होने के बाद में महाप्रभु जी ने उन सब को बुलाया और बुला करके एक एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं गुण, ये कैसे भक्त हैं, और उनको धीरे धीरे विदा कर रहे हैं। सब भक्तों का गुण गान किया है। इसमें कुलीन वार्षिक भक्तों का कुछ प्रश्न भी है, ये हमारा क्या का अब रथ जाता से लौट करके हम लोग क्या करेंगे। महाप्रभु जी ने उनको संक्षेप में बतलाया घर से लौट यहाँ से घर में लौट करके कृष्ण की सेवा और नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा और भगवत सेवा, ये तीन काम करना। वैष्णव सेवा नाम कीर्तन, नाम कीर्तन तो ठीक है ये तो दर्पण मार्जनम इत्यादि में, और भगवत सेवा भी भगवत अर्चन से लेकर के भावमयी सेवा ये सब है कृष्ण के प्रति। किंतु वैष्णव के संबंध में पूछा कि कौन वैष्णव है, उनकी कैसी सेवा होनी चाहिए, तो उन्होंने एक एक वर्ष में एक एक प्रकार की व्याख्या करके पहले वर्ष में कनिष्ठ वैष्णव, दूसरे वर्ष में मध्यम और तीसरे वर्ष में उत्तम वैष्णवों का लक्षण बतला करके उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए ये सब बतलाए। तीन प्रकार के वैष्णव लोग माने गए हैं, कनिष्ठ, मध्यम और
जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ।
तो उन लोगों के लिए एक एक वर्ष में वो शिक्षा दी गई जिनकी श्रद्धा कोमल है। कोमल है मैंने क्या, अभी पक्व नहीं हुई है। गुरु जी ने मंत्र दिया कृष्ण का, कृष्ण का भजन करने को लिए हम कहा, किंतु बचपन से जो हम ओम नमः शिवाय कर रहे हैं इसका हम क्या करेंगे, हृदय से वो चीज निकल नहीं रही, एकांतकता आ नहीं रही है, और इधर में गुरु जी के बात की अवहेला भी नहीं कर सकते, अब क्या करें, बुद्धि अभी स्थिर नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं किंतु वैष्णव इत्यादि का कुछ, यहाँ तक कि गुरु जी की भी सेवा नहीं उतना मन से करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में उनकी चित्त वृत्ति लगती है, और ठाकुर जी को ही बस यही समझते कि यही ठाकुर जी, नियमित रूप में उनका जगाना, सेवा इत्यादि का ये बुरा चीज नहीं है, किंतु फिर भी ये मध्यम अधिकार नहीं है। बल्कि जो वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं और भगवान का जो परिचय देने वाले जो वैष्णव हैं उनकी यदि सेवा होगी ना और ठाकुर जी की सेवा होगी तो ये मध्यम अधिकार। इसमें भी मध्यम अधिकारी का भक्तों का बतलाया श्रद्धा के अनुसार में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी का विचार होता है।
शास्त्र युक्ति नहीं जाने दीड़ो,
शास्त्र युक्ति नहीं
जाने
दीड़ो,
श्रद्धावान
किंतु श्रद्धावान
मध्यम अधिकारी से ही
श्रद्धा है
महाभाग्यवान,
किंतु अभी तत्वज्ञान इत्यादि का सिद्धांत परिपक्व नहीं है। जैसे हम लोगों में अभी बहुत ऐसे ही हम लोग हैं, श्रद्धा है कृष्ण की सेवा छोड़ करके हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, ये बात तो ठीक है, किंतु शास्त्र युक्ति बिल्कुल नहीं, कुछ पूछ देंगे तो नहीं आएगा। और जिन लोगों की शास्त्र युक्ति भी सुदृढ़ है और श्रद्धा भी सुदृढ़ है, ये कौन है,
उत्तम अधिकारी,
उत्तम अधिकारी से
अपने संग से दूसरों को भी उस स्तर में ला दे, ये उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी ऐसा नहीं है, उसकी श्रद्धा तो दृढ़ है किंतु सब विषय में अभी पारंगत नहीं है, किंतु धीरे धीरे हुई बे उत्तम, वो उत्तम अधिकारी, वो पहले मध्यम में कनिष्ठ, फिर मध्यम मध्यम और अंत में इस प्रकार से तीनों के विचार किए। मध्यम अधिकारी का कुछ कर्तव्य है, कनिष्ठ अधिकारी का कोई कर्तव्य नहीं है, उतना जानता ही नहीं है इसलिए कर्तव्य नहीं, अज्ञानी कुछ है किंतु श्रद्धालु कुछ कुछ है, इसलिए उसके लिए ये नहीं बदला है, किंतु मध्यम अधिकारी के लिए विचार प्रधान बदला है। वो उन लोगों के लिए बतलाया क्या, प्रेम मैत्री लोगों के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम नहीं, सांप के प्रति, दुष्ट के प्रति ये प्रेम नहीं, भक्तों के प्रति भी कृष्ण वाला प्रेम नहीं लगेगा, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्तों से मैत्री।
प्रेम माने आसक्ति, प्रेम माने आसक्ति भक्ति संदर्भ में,
भक्तों के साथ में क्या होगा मैत्री। तीन प्रकार के भक्त हैं, तीन प्रकार के भक्तों में तीन प्रकार की उनकी मैत्री होगी, जो उत्तम कोटि के हैं
सेवायुक्त
मैत्री, मध्यम वाले के प्रति
मैत्रीयुक्त
मैत्री, सख्तपूर्वक मैत्री, और कनिष्ठ के प्रति दयापूर्वक, ये तीनों में ऐसा है। और इसके बाद मैत्री कृपा, जो कि अनभिज्ञ व्यक्ति हैं किंतु
श्रद्धालु,
उनके प्रति तत्व ज्ञान दे कर देना, हरि कथा सुनाना, ऐसी दया है। और जो विरोधी हैं उन पर कृपा करने की जरूरत नहीं, कृपा नहीं देंगे, तुम पर कृपा कर देंगे, इसलिए उनकी उपेक्षा माने उनसे संग मत करो, कौन नहीं संग करेगा?
मध्यम भीतर।
किंतु उत्तम वाला क्या करेगा? उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो कर सकता है नहीं भी कर सकता। उनके ऊपर में शास्त्र का कोई अंकुश नहीं है। और उत्तम अधिकारी क्या करेगा? वो सर्वत्र ही भगवत बुद्धि से देखेगा, अपने उपास्य को सब में देखेगा और अपने उपास्य में ही सबको दर्शन करेगा। इसलिए उत्तम अधिकारी है। वो किसी को सहज ही उपदेश नहीं करेगा, वो उपदेश नहीं करेगा। क्यों? अरे सभी तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी को उपदेश। मध्यम अधिकारी जानता है कि ये सेवा करते हैं ये सेवा नहीं करते, इसलिए। किंतु मध्यम अधिकारी अपनी कथाओं से किसी को भगवान के तरफ ले जाएगा, इतना तो करेगा, ये तो कृपा करेगा। किंतु यथार्थ कृपा करने का अधिकारी है उत्तम अधिकारी। तीन प्रकार के उत्तम अधिकारी भी कौन कौन?
मुंचित कसाय, निधित कसाय, प्राप्त पार्षद भागवत जी।
जो प्राप्त परिकर दशा है, जैसे नारद जी भगवान के परिकर हैं, उनका कोई जड़ शरीर नहीं है, सब समय भगवत आविष्ट रहते हैं, वो उनकी कृपा। और दूसरे नहीं तो जिनका माया इत्यादि सब दूर हो गया है, आसक्ति दूर हो गई, किंतु मूर्छित है, कभी भी उठ सकती भी है, हो सकता है इसका नष्ट भी हो जाए, इसलिए ये लोग मूर्छित कसाय सुखदेव गोस्वामी।
और नारद इसलिए दासी पुत्र थे, उसमें मूर्छित
पहले वाला जो है
मूर्छित
कसाय नारद जी का जी, और उद्धव जी का नहीं,
सुखदेव
गोस्वामी जी का
निर्भूत
कसाय, उनका कसाय सब, और नारद जी का तो सब प्राप्त परिकर। इसलिए ये तीन लोग यदि कहेंगे उसके तरफ में देख लें, बस उनका उपदेश। मध्यम अधिकारी अपने संग से क्रमशः तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके वैराग्य ला करके और उनको। मध्यम अधिकारी ही गुरु है, उत्तम अधिकार वाले उनका गुरु इत्यादि से वो कुछ नहीं करते। हाँ, कभी जब मध्यम अधिकार में आ जाएंगे, जैसे नारद जी ने किया वैसा कुछ, क्यों तो भी मध्यम अधिकार में आकर के आ सकते। इसलिए महाप्रभु जी की सब ऐसे ही लीलाएं हैं, कभी वो मध्यम अधिकार जैसा दे करके जगत का कल्याण की है, और उत्तम अधिकार जैसा हो करके लोगों में भक्ति का संचार किया। श्री गौरचंद्राय राधिकायै तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रे तन्मयतया करवो किमेदो तं सर्वभूतहृदयं मां। तवैवास्मि तवैवास्मि नयामि त्वया विना, इति विज्ञाय राधे तं नयामि। भजन रहस्य पाठ कर रहे थे, साधारण रूप से बोल चलते ना, साधारण रूप से श्रद्धा पूर्वक भजन करते हुए अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और आसक्ति के बाद में भाव उत्पन्न होता है। भाव के परिपक्व होने पर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम प्रकट होता है। इस प्रेम से ही भगवान का साक्षात्कार या मिलन होता है, भगवान प्राप्त होते हैं। बिना प्रेम के हुए भगवान नहीं मिलते। जिनके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, भगवान का दर्शन बड़ा कठिन है, नहीं होगा। इसीलिए भगवान प्रथम अवस्था में दर्शन नहीं देते, प्रेम की परिपक्व अवस्था होने पर ही उनको दर्शन देते। इसलिए पहली अवस्था में भगवान के प्रति विरह भगवान ही खुद जगाते हैं। जब उसके विरह में भगवान के लिए वो तड़पने लगता है, जब वो किसी प्रकार से हरा नहीं सकता, तब उसको दर्शन देता है। जैसे नारद चरित्र में हम लोगों ने देखा है, प्रहलाद के लिए देखा है और सब साधकों के लिए देखा जाता है। मीराबाई का भी देखो ये कितना तड़पन था, कितना तड़पती थी विरह, इसलिए पहले प्रभु उस विरह को जगा करके फिर उसको दर्शन देते हैं। इसलिए प्रेम को दो विभाग में विभक्त कर दिया है, पहला विप्रलम्ब भाव और दूसरा बतलाया भगवान को दर्शन करके जो आनंद होता है उसको, भगवान की सेवा करने से जो आनंद होता है। यहाँ पर हमने पहले सब चीज का वर्णन किया है, अब भक्ति विनोद ठाकुर जी उसमें से अत्यंत विरह में कोई तड़पने पर भगवान कैसे दर्शन देते हैं इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं। जैसे गोपियाँ थी, गोपियों से मिले और मिलने के बाद में कुछ देर के बाद में जटराष्ट्र अंतर ध्यान, गोपियाँ अत्यंत तन्मय होकर के उनको ढूंढने लगी और विरह में तड़पने लगी। फिर जब उनसे रहा नहीं गया गोपियों से, तो वो फिर लौट करके यमुना के किनारे प्रार्थनामयी रोदन करने लगी, रो रो करके प्रार्थना करने लगी। कृष्ण उस प्रार्थना को सुन करके रह नहीं सके, उनके बीच में फिर प्रकट हो गए, उसी को ये वर्णन कर रहे हैं। ताशाम आदिभूत सौरी स्मयमान मुखाम बुज पीताम्बर का सगली साक्षात मन 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 मथ। इसी चीज को करें, साधक को भगवान के लिए कैसी तड़पन होनी चाहिए। उस समय गोपियां हंस करके खाने पीने में भूल गई थी, इसलिए साधक उस समय में सब कुछ छोड़ करके तन मन की सबको सुधू खो करके केवल मात्र उनके विरह में जब तड़फेगा तभी भगवान का दर्शन संभव है। ऐसे नहीं हुआ जैसे अभी हम लोग हैं ना, खा पी करके बड़े आनंद से जीवन लाभ कर रहे हैं, माताएं बच्चे को दूध पिला दिया और बिस्तर पर लेटा दिया, वो थोड़ा सा सो गया। यदि वो नहीं सोता है माँ के लिए इधर उधर करता है, तो एक लोला हाथ में एक झुनझुना लोला खिलौना उसके हाथों में रख देती और उसी से वो मान करके खेलने लगता है, मुख में देने लगता है, तो मैया उसको छोड़ करके अपने किसी काम में चली जाती। और यदि बच्चा किसी तरह से नहीं मानता है, रोता ही रहता है, तो फिर उसको गोदी से उठा करके उसको अपना दूध पिलाती है। ऐसे ही भगवान को भी समझो, भगवान के तो और भी कुछ काम हैं, इसलिए जब तक ऐसी तड़फन पैदा नहीं होगी, जब तक हम संसार में आबद्ध रहेंगे, संसार भी अच्छा लग रहा है, वो भी करना अच्छा लग रहा है, तब तक नहीं दर्शन देंगे। ऐसी अनुभूति हो विरह भगवान के लिए, भगवान के लिए खुद छटपटा करके रोएंगे, संसार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तब ऐसा होगा। साधारण रूप में एक देखो, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र किस लिए नाम हुआ, राष्ट्र को राज्य को धर रखा है और उसके लिए चोरी बेईमानी झूठाई जो कुछ छल छंद सभी कर सकते हैं, और उनके पुत्र भी ऐसे। पांडवों को उन्होंने लक्षा घर में जलवाया, दुर्योधन ने उनको विष दिया, तो अभी धृतराष्ट्र ने नहीं ये कहा जैसे देखो पांडव लोग धार्मिक हैं ऐसा मत करो, ऊपर के दिखलाने के लिए भीष्म पितामह के सामने तो कुछ कह देते हैं, भाई अच्छी तरह से रहो, किंतु कुछ दंड नहीं देते। विदुर ने कहा इस दुष्ट को कुलंगार को घर से निकाल दो, राज्य से वंचित कर दो, उनकी भी बात नहीं सुना, बल्कि उनके सामने ही दुर्योधन ने अपने मित्रों के साथ उनको राज्य से बाहर कर दिया और वो धनुष और मुकुट सब छोड़ करके चले, यही उसके सत्यानाश का कारण हुआ। तो ये सब दुख करके भी धृतराष्ट्र को कोई ज्ञान नहीं होगा, जन्मांध था, जन्म से अंधा था, किंतु राजनीति में बड़ा कुशल है, धर्म और प्रज्ञान माने धर्म की बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई, अपने पुत्रों के प्रति स्वार्थ वशतः ये सब काम कर रहे हैं। काम कराने का फल यह हुआ, अपना वंश तो गया ही, एक सौ पुत्र मारे गए, उनके नाती भी मर गए, दिया बाती जलाने लायक कोई नहीं रहा, पांडवों की कम क्षति नहीं हुई, उनकी भी बड़ी भांति है, उनके भी पुत्र मारे गए, पितैषी मारे गए, बंधु बंधु मारे गए, दोनों वंश स्वाहा हो गए। पांडवों के वंश में कौल पांच पुत्र और अभिमन्यु उस समय में गर्भ में था, बस अभिमन्यु ने परीक्षित महाराज जी कौल गर्भ थे, बस यही बचे, फिर इनसे इसका वंश हुआ। तो जिस समय में उनको राज्य मिल गया, उनके पांच सप्त पुत्र मारे गए हैं, अब वो रो रहा है। हस्तिनापुर में पांचों पांडव गए और उनके चरणों में गिरे और उनको प्रसन्न करने लगे, हमारा वंश समाप्त हो गया, अब आप कृपा करें हमारे ऊपर में, अब हम लोगों के साथ में चले, आप रोइए मत, हम लोग आपकी सेवा करें, ये ठीक है, जैसा होना सो हुआ। भीम ने ये सब किया, मैं शत्रुता भूल करके अब भीम को जरा गोदी लेना चाहता हूँ, आलिंगन करना चाहता हूँ। भीम को बुलाया, कृष्ण वहाँ पर थे, कृष्ण पहले से ही एक लोहे की मूर्ति भीम का बना कर ले आए, उन्होंने कुछ समझ करके और लोहे की मूर्ति उसके गोदी में दे दिया और वो एकदम क्रोधित हो करके एकदम जोर से उसको ऐसे दबाया कि लोहे की मूर्ति चूर्ण विचूर्ण हो गई, जबकि वो लोहे की मूर्ति जब चूर्ण विचूर्ण हो गई तो लोगों ने दिखा दिए, यदि भीम होता तो क्या होता, लोहे की मूर्ति को चूर्ण विचूर्ण कर दिया तो तब भीम होता था, ये पीस करके आटा बन जाता, शत्रु बन जाता। देखा जी इतना बल इसको है,
तो भीम भी अभी छोड़ देते, भीम छोड़े
हैं,
अभी छक्का छुड़ा देते
भीम, मरने के बाद में
नहीं, जब ही ऐसे पकड़ो तभी दे देते दो चार दूसरा तत्व
नहीं होता उस समय, उनका काम काल नहीं चलता। तो अब इतना होने पर फिर रोने लगा, अरे हमने भीम को मार दिया, भीम एक रहस्य भी था वो भी चला गया, भीम को पहले से वो कुछ स्नेह भी करते थे, उसे डरते भी थे, भीम उनको पहले से ही बचपन से ही सेवा करता था, अब वो रोने लगा। तो कृष्ण ने समझाया जो भीम मरा नहीं है, ये तो लोहे की मूर्ति थी, तब वो कुछ प्रसन्न हुआ। तब भीम ने कहा जी अब जो कुछ हो गया अब तो क्षमा करके आप हमारे साथ में हम लोगों के पास में रहें हस्तिनापुर में, और यहीं पर आप खाइए पीजिए और भगवान का भजन। तो वो राजी हो गया, गंधारी भी राजी हो गई, दोनों इन लोगों के साथ में हस्तिनापुर में आए, उन लोगों ने इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया और आ गए हस्तिनापुर में, राजा हो गए और इनको पांग भी करने लगे, खिलाने भीम ही उनको खिलाता था। एक दिन विदुर जी घूमते घामते इतने दिनों के बाद जब सुना ये युद्ध हो गया है, कौरव लोग सब मारे गए हैं, धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में हैं, तो वो आ गए। इसी समय उनकी भेंट उद्धव जी से हुई थी, उद्धव जी के बाद में भेंट के बाद में यहाँ आए और यहाँ से फिर चले गए वहाँ बद्रीनारायण, वहाँ जाकर के विदुर से इनकी भेंट हुई। तो जब यहाँ आए तो पांडवों ने इनका बड़ा आदर किया, पांडव ने कहा आज हमारा परम सौभाग्य है, आप जैसे महात्मा बिना किसी कारण के हमारे घर में आए। बिना कारण के क्यों आते हैं, दूसरे लोग नहीं समझे, वो तो समझेंगे ये हमारा कुछ लेने के लिए आए हैं, और सच्चे लोग जो हैं धार्मिक वो समझेंगे आज हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, हम लोग तो भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए इसका उपदेश कुछ देने के लिए हमारे परम मंगल के लिए आए। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से कह रहे थे, जब रात हो गई, जब सब लोग सो गए, तो ये विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास। इनको देख करके वो रोने लगा, बूढ़ा डकर डकर करके रोने लगा, तुम्हारी बात हमने नहीं मानी और हमारे पुत्रों ने तुमको घर से बाहर कर दिया, आज इसी का फल ये हुआ कि हमारी ये दुर्दशा। जब वो डकर डकर के रो रहा था, तुमने कहा ये अंधे, अब तुम यहाँ पर किस लिए पड़ा हुआ है घर में? जिस भीम को और पांडवों को तुमने मारने की चेष्टा की, षड्यंत्र किया, और जिसको मारने के लिए युद्ध हुआ, आज उसी वही रोटी तुमको कुत्ते की भांति दे रहा है और कुत्ते की भांति तुम रोटी खा रहा है, तुमको लज्जा नहीं आती उसका दिया हुआ रोटी खा रहा है तू? तो अब किस लिए बचा है, किस लिए जिंदा है, इस घर में क्यों पड़ा है, बतलाओ तो? लड़के तो मारे गए, बहुआ विधवा हो गई, घर सुना हो गया, जिसमें तुम राजा की तरफ में रहता था, आज तुम वहां पर भीख मंगी रोटी के ऊपर में तुम जीवित रहता है, तुमको लज्जा नीचे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम एक बात करो, अभी मेरे साथ में घर से निकल चलो, अभी मैं चलता हूं। हाँ, हमारे साथ निकल जाओ। तो मैं अंधा कैसे चलूंगा? अरे मैं तुम्हारी लठिया पकड़ लूंगा। गंधारी ने कहा कि हम भी चलेंगे। कुंती जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। पशु सब को लेकर के रात में दरवाजा खोल करके राजभवन से निकल गए, और निकल करके हरिद्वार पार होकर के ऋषिकेश में पहुंचे। हरिद्वार का लिखा है गंगा द्वार।